भी है, फल भी है और जो है ये फूल भी है। सीता जी जिस समय में घबरा करके बोलती है, सिंह व्याघ्र मृग पक्षी ये सब दौड़ते हैं इधर से उधर, क्योंकि रावण का भी तो वेग कम नहीं था, प्रभाव कम नहीं था। सब सोचते हैं कि अब हमको हम कैसे क्या कर सकते हैं, आखिर रावण के सामने कौन आए। सूर्य भी निस्तेज हो गया था। सब लोगों के मन में, सब प्राणियों के मन में एक ही बात थी, नास्ति धर्म है, कोई धर्म रम की कोई महिमा नहीं ना, और न सत्य की महिमा है, न यहाँ सरलता की महिमा है, न दयालुता की महिमा है। देखो राम जी ने सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया, कितने सरल स्वभाव के, कितने दयालु स्वभाव के। ऐसे राम की सीता का यदि रावण जैसा व्यक्ति हरण करता है, इसका मतलब धर्म पालन करने का कोई अर्थ नहीं रहा। इस प्रकार से सारे प्राणी है वो आपस में विचार कर रहे हैं, क्या करें। उद्वीक्ष उद्वीक्ष नए नहीं, बार बार वो देखते हैं और भय से बिचारे वो वापस अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि अब रावण छोड़ देगा, अब छोड़ देगा, अब छोड़ देगा। परंतु रावण कहाँ छोड़ने वाला, रावण उसको ले जाया जा रहा है। ताम तो लक्ष्मण रामे थी, वो लक्ष्मण राम इस प्रकार से उच्च स्वर में चिल्ला रही है और उसको सुन सुन करके सब प्राणी अपने कान एकदम कैसे बंद कर सकते हैं, एकदम जो है वो अपने शोक के द्वारा अपने को छोटा किए जा रहे हैं। आखिर रावण ने अपना विनाश कर ही लिया है, अपने हाथों से उसने जहर पी ही लिया है, ऐसा सब प्राणी देख रहे हैं और देखते हैं कि ये सीता को छोड़ने वाला लगता नहीं है। आकाश मार्ग से रावण सीता को ले जा रहा है। सीता के मन में बड़ा भय पैदा हो रहा है। सीता उस समय में जोर जोर से रोती चिल्लाती रावण को बोलती है, ए रावण तू महान निर्लज्ज है, तू महान पापी है, तू एक चोर के समान मेरे आश्रम में घुस करके आया है, तू एक साधु बन करके आया है, तू छल करने वाला है, क्योंकि तू महान कायर है। यदि इतनी शक्ति थी तो तू इसी रूप में यदि आश्रम में आता तब तो मैं कुछ जानती भी, लेकिन तू ऊपर से तो और रूप बनाया और तू भीतर से और ही रूप वाला निकला, इस प्रकार से छल करके तुमने ये काम किया। मुझे लगता है कि वो मृग भी कोई तुम्हारा ही कोई माया का प्रभाव हो सकता है। ओहो मुझे मालूम नहीं था रावण तुम लोग ऐसे मायावी हो, हमारे राम के पास तो एक शस्त्र पर्याप्त है, सब मायाओं को काट डालता है। रावण तुमने गीदराज को भी मार दिया है, गीदराज के मर जाने से मेरा मन वैसे ही दुखी हो गया और इधर तुमने राम लक्ष्मण से मुझे अलग कर दिया, इसका मतलब अब युद्ध अवश्यम भावी है और इस युद्ध के अंदर राम जरूर जीतेंगे, क्योंकि पापी व्यक्तियों की ज्यादा दिन तक स्थितियां रहती नहीं है। और तुम पापी व्यक्ति पाप करके लज्जा का भी अनुभव नहीं करते, स्त्री का हरण करना कितना नीचा काम है, रावण कोई तुम्हारी स्त्री का हरण करे तो तुम क्या कर सकते हो। पर भाई तुम तो पापी हो, पापियों के साथ में कोई पाप करता है तो वो पाप को पचा लेते हैं। हे नृशंस, हे अधार्मिक और हे अभिमानी, तुम्हारे शौर्य को धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारे आचरणों को धिक्कार है, तुम कुलांगार हो, एक अबला होकर उसके मुख से तुम कितनी कितनी दुत्कारे तुम सहन कर सुन रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है। तू यदि इतना ही बलवान है तो राम और लक्ष्मण के सामने मुझे क्यों नहीं ले गया, उनके सामने मुझे ले जाता तो तब तुझे पता चलता कि राम और लक्ष्मण में कितनी शक्ति है। नहीं चक्षुपथम प्राप्य है, अभी तक तुम राम और लक्ष्मण के आंखों के सामने आए नहीं हो, एक मुहूर्त भी यदि तुम उनके सामने ठहर जाते तो वो तुमको बता सकते थे कि हमारे में कितना पराक्रम और तुम्हारे में कितना पराक्रम है। तुम उनके बाण का स्पर्श तक नहीं सह सकते थे। वने प्रज्वलत सेव स्पर्शम अग्निर विहंगम है, जिस प्रकार से अग्नि लगती है वृक्ष में, वन में अग्नि लगती है तो पक्षी भग जाते हैं, उसी प्रकार से उनके सामने तुम युद्ध करते तो पक्षियों के समान तुम भी भग जाते हैं। साधु कृत्वात्मन पथ्यम, साधु माम मुंच रावण, मत प्रदर्शन संक्रुद्धो हत भ्रात्रा सह पतिर्मम। देखो तुमने कौन सा ही अच्छा काम किया है, तुमने कौन सा अच्छा काम किया, तुमने आश्रम में आकर के और मेरा हरण किया और तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो। मत छोड़ो, कोई बात नहीं रावण, ले जाओ, कोई बात नहीं, तुमने बड़ा अच्छा किया। जब अब मेरे निमित्त जब युद्ध होगा तब तुम अब अवश्य मारे जाओगे, राम तुमको अवश्य मारेंगे। एक स्त्री का हरण हुआ, मेरा हरण हुआ, मैं समझती हूँ कि संसार में अब अंतिम स्त्री का हरण हुआ है। अब तेरे जीवन में स्त्री हरण का पाप ऐसा भयंकर हुआ है कि अब तू दूसरी स्त्री का हरण करेगा नहीं, क्योंकि इसका परिणाम मृत्यु है और मृत्यु के बाद तुम किसी फिर तुम क्या कर सकते हो। तेरा नीच व्यवसाय है, तेरा निरर्थक व्यवसाय है, अतएव तुमने ऐसा पाप किया है। न यहम तम पश्यन्ति भर्तारं विबुधोपमं, मैं इंद्र के समान मेरे पति को जितना सम्मान देती हूँ ऐसा कोई दूसरा बलवान पुरुष संसार में नहीं है। उत्सहे शत्रु वशगा प्राणान धारय तुम चिरम, मैं भी देखो कैसी हूँ कि शत्रु के हाथ में आ गई लेकिन फिर भी मेरे प्राण जीवित है। मैं मर जाती तो बड़ा अच्छा था, पर मरना भी अपने हाथ की बात नहीं है। मृत्यु काले यथा मर्त्य, जब आदमी मरने लगता है तब सब चीजें उसके लिए उल्टी हो जाती है। अब देखो मेरे लिए कोई बात उल्टी नहीं हो रही है, तुम्हारे लिए बहुत बातें उल्टी हो रही है। मैंने कोई पाप नहीं किया है, तुमने पाप किया है। एक कालपास तुमने अपने गले में बांध लिया है और ये जनस्थान को तुमने भयस्थान बना दिया है। राक्षस पाप से डरो, राक्षस अन्याय से डरो। देखो मुझे लगता है कि तुमको ये वृक्ष के पत्ते सोने जैसे दिख रहे हैं। मुझे मालूम है कि तुमको ये वैतरणी नदी सुंदर मालूम दे रही है। मुझे मालूम है कि असी पत्र वन तुमको नहीं दिखाई दे रहा है, नरक है, असी पत्र वन नरक होता है। और देखो तुमको वो शालमली नरक नहीं दिखाई देता है ना, कि जिसमें लोहे के कीले जगह जगह लगे रहते हैं और उस प्राणियों को काटते रहते हैं। तुमको महान नरक मिलेंगे, विषम पीतपे व निर्घृण है, तुम जहर पी चुके हो रावण, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। कब निश्चित है ये तो पता नहीं, लेकिन मौत तुम्हारी निश्चित है। निमेशांतर मात्रेण, एक थोड़ा सा भी समय राम जी को मिल जाता युद्ध में तो फिर रावण तुम्हारी दशा और ही होती। रावण तुमसे तो अच्छे वो खर दूषण थे, रावण तुमसे अच्छे तो वो 14,000 राक्षस थे। वो कम से कम राम के सामने तो आए, उन्होंने कोई छल तो नहीं किया, कपट तो नहीं किया, तुमने कपट किया है। 14,000 राक्षस राम के सामने लड़े हैं, युद्ध किए हैं, वे वीर गति को प्राप्त किए हैं, लेकिन रावण तू वीर गति को क्या, तू महान निम्न गति को प्राप्त होने वाला है। तुमने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं समझता हूँ शायद तुमने सुना नहीं होगा, उन 14,000 राक्षसों को एक अकेले राम ने मारा है। उस समय में लक्ष्मण जी ने भी सहायता नहीं की है, लेकिन तू कैसा है, इतने पर भी तू नहीं समझता है, इतने पर तो तुम्हें होश आना चाहिए कि राम में कितनी शक्ति है। एतच्चान्यच्च परुषम, इस प्रकार से सीता जी ने और भी बहुत से कठोर वचन कहे, बहुत विलाप किया, लेकिन वो रावण इस समय ऐसा निर्लज्ज हो गया था, उसको कितनी बातें सुनाओ उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं था। और वो ले जाए जा रहा था, ले जाए जा रहा था, ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते, वो सीता राम, वो सीता राम लक्ष्मण इस प्रकार से चिल्ला रही है। इतने में ही उसने 5 बंदरों को देखा, एक पर्वत के ऊपर 5 बंदरों को देख करके सीता ने अपने कपड़ा फाड़ करके और उसमें अपने आभूषण डाल करके और नीचे डाल दिया और आवाज लगाई, हे बांदरों, यदि राम तुमको कहीं मिल जाए उनको बता देना और ये आभूषण दे देना। ये सब सीता जी ने रावण की गोद में किया, लेकिन रावण दूसरे विचारों में था, रावण को कुछ पता नहीं था। दूसरा विचार क्या था, संभ्रमा, रावण के मन में बड़ी घबराहट थी। रावण ये भी तो सोच रहा था कि कहीं जटायु आदि के द्वारा या और किसी के द्वारा राम को पता न चल जाए और राम कहीं पीछे मेरे पीछे आकाश मार्ग से आ भी न जाए, बड़ा भय था। भय होने के कारण रावण ने इधर ध्यान नहीं दिया और वो आभूषण रावण के गोद में सीता ने गिरा दिए। और गिराने के बाद वो आगे पंपा सरोवर की तरफ से चले जा रहे थे। पंपा सरोवर का पार करके लंकापुरी की तरफ जा रहे थे। सीता जी फिर रो रही थी और वो सीता ऐसे लग रही थी मानो रावण के हाथ में कोई जहरीली सर्पणी आई हुई हो। वन, जंगल, पर्वत, तालाब, आकाश, इन सब को बड़े वेग के साथ पार कर रहा था। पार करते करते उनको समुद्र दिखाई दिया और सीता जी मनी मन में समुद्र को कहने लगी, हे सागर, आप तो मेरे पूर्वज रहे हो, मेरे ससुराल में पूर्वज रहे हो, पर आप भी क्या कर सकते हो। इस प्रकार से सीता सर्वथा हताश हो गई और वो सागर को पार करते हुए बड़े आसानी के साथ रावण अपने लंका में आया। लंका में आने से पहले आकाश में रहने वाले चारणों ने एतदंतो दशक ग्रीव जोर से आवाज करते हुए कहा कि रावण का अब निश्चित रूप से अंत होगा। ये बात सिद्धों ने भी कही, चारणों ने भी कही और उसके बाद रावण सीधा लंका में प्रवेश कर चुका। लंका में गया, लंका का बड़ा स्वरूप दिखाया, देखो हमारी लंका कैसी है। रावण की वो लंका जिसके चारों तरफ बड़े बड़े परकोटे, जिसके चारों तरफ खाई और फिर उसके बाद चारों तरफ उसके समुद्र, इतनी सुरक्षित थी ये लंका। मायासुर था, उसकी माया से बनी हुई थी। और उस लंका के अंदर सीता को ले गया। सीता जी को ले जा करके वहाँ अपने एक बड़ा सुंदर महल था, उस महल में ले जाकर रावण ने सीता को स्थापित कर दिया। सीता को वहाँ ले जाकर रख दिया और रख करके वहाँ जितनी स्त्रियाँ थी पिशाचनी राक्षसियाँ घोर दर्शन वाली, उन सबको रावण ने सीता के विषय में समझाते हुए कहा, हे राक्षसियों, कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, कोई भी प्राणी बिना मेरी सम्मति के इस स्त्री का जो ये महल है, इस महल में किसी प्रकार से प्रवेश न करे और न इस स्त्री को कोई देखेगा। और इस स्त्री के लिए मणियां हैं, मोतियां हैं, सोना है, वस्त्र है, आभूषण है, जो जो ये चाहती है वो सब इसको तुम लोग खुले रूप से दे दो। या च वक्षति वेदेहिं, जो कोई राक्षसी सीता को डराएगी, धमकाएगी, सीता जी को कोई अप्रिय वाणी बोलेगी, अज्ञान से भी बोल दे, जानकारी से बोल दे, कुछ भी बोल देगी, तो समझना उसका अंत में विनाश ही होने वाला है, उसको सब प्रकार से मारना ही है, अतः वो मृत्यु दंड को प्राप्त न हो ऐसा आपको काम करना है। सीता जी की खूब सेवा करनी है और सीता की प्रसन्नता का तुमको ध्यान करना है। ऐसा कह करके वो अपने महल के बाहर आया, बड़ा घबराया हुआ, बड़ा सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार से वह रावण अपने महल के दूसरे हिस्से में जाकर चुपचाप बैठ गया और विचार करने लगा कि अब आगे किम कृत्यम, मुझे क्या करना है, ऐसा वो सोचने लगा। और जो भगवान के विधान में प्रसन्न रहने वाले हैं, उन भक्तों के सामने भगवान स्वयं ऐसी ऐसी लीला करते हैं और अपने विधान की मंगलमयता उनके हृदय में भक्ति के द्वारा संचारित करते हैं। सीता का हरण हुआ और उसको लंका के महल में लाकर रख दिया। रावण ने आगे विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। रावण अपनी दृष्टि से बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसने खूब विचार करने के पश्चात बड़े बुद्धिमान 8 राक्षसों को बुलाया और 8 राक्षसों को बुलाकर कहा कि हे मेरे विश्वसनीय राक्षसों, आप लोग लंका से छिप करके जनस्थान में जाओ और शस्त्र वगैरह सब साथ में लेकर जाओ। वहां किसी प्रकार का तुम अपना परिचय मत देना, चुपचाप जाओ। वहां जनस्थान में खर का, दूषण का, तृष्णा का 14,000 सैनिकों का राम ने अपने बाणों से नाश किया है। अब इस समय में राम वहां क्या कर रहा है? मैं अपने सैनिकों का बदला लेने के लिए राम के साथ में बैर मोल ले चुका हूं, अतः मुझे नींद नहीं आती है। मैं ये चाहता हूं कि जब तक खर और दूषण के मारने वाले राम का बदला न लिया जाए तब तक चैन से न रहा जाए। पहले मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि राम इस समय क्या कर रहा है और राम के पास में क्या खबर है। देखो, इसने ये नहीं कहा है कि मैं राम की पत्नी सीता को लेकर आया, अभी कुछ नहीं कहा। वो उनके मन में ऐसी बात भरता है कि जैसे मैं सैनिकों का बहुत ही हितेशी हूं। हे मेरे सैनिकों, आप लोग जाओ, कोई प्रमाद नहीं करना। और युष्माकं तु बलम् ज्ञातम्, मैंने आपका बहुत बार बल देखा है, बुद्धि बल भी देखा है। चुपचाप जाकर सब गतिविधि का मालूम करके आप मेरे पास लंका में खबर भेजते रहो, या आप स्वयं ही लंका में आते जाते रहो। जिस प्रकार से भी हो, आप जो है लंका के अंदर मेरे पास ये समाचार राम के भेजते रहो। इस प्रकार से उन आठों को वहां से भेज दिया। इधर रावण सोचता है कि सीता ने तो खाती है न पीती है, सीता जो है वो महलों की तरफ देखती भी नहीं है। सीता ने कपड़े के अंदर अपना मुंह छिपा रखा है और सीता बराबर रो रही है। रावण के मन में बड़ी चिंता हुई। वह सीता के महल में गया और सब राक्षसियों के बीच में रोने वाली सीता को वो मनाने की बातें करने लगा। जिस प्रकार से वायु के झोंके से कमलनिया हिलती रहती है, इसी प्रकार से सीता जी शोक के झोंके से अपने मन को स्थिर नहीं कर पाई है। जिस प्रकार यूथ से परिभ्रष्ट होकर हिरणी कुत्तों के बीच में आ जाती है, उसी प्रकार से इन राक्षसों के बीच में सीता अपने को पा रही है। सीता के पास रावण गया और रावण ने बताना चालू किया, सीता ये मेरे महल कितने ऊंचे ऊंचे हैं, इन महलों में हमारे हजारों हजारों स्त्रियां रहती हैं, इन एक एक महल में अनेक प्रकार के बगीचे हैं जिनमें तरह तरह के पक्षी हैं, यहाँ कैसी अच्छी चित्रकारी की गई है, यहाँ सोने के चांदी के ऐसे चित्रकारियां और प्रदर्शनियां की हैं जो कहीं भी नहीं है। देखो सीते, इस महल के ऊपर तुम चढ़ करके देखो, ये जो है सीढ़ियां कितनी अच्छी बनाई गई हैं, कहीं हाथी दांत के गवाक्ष माने झरोखे बनाए हैं, यहाँ सोने के लड़ियां, सोने की मणियों की लड़ियां जगह जगह लगाई गई है। देखो सीते, तुम अब राम को तो तुम्हें भूलना ही होगा, पिछली बात भूलनी होगी, और इस सुरक्षित नगरी को देखो। रावण ने कहा कि देखो, मेरे पास 32 करोड़ राक्षस हैं, और इनमें मैंने बूढ़ों का नाम नहीं लिया है, इनमें हमने बालकों का नाम नहीं लिया है, ये तो 32 करोड़ राक्षस तो केवल जवानों का नाम लिया है और न इनके पत्नियों का नाम लिया है, और 1,000 राक्षस केवल मेरी एक शरीर की सेवा में रहने वाले हैं। ये राज्य तंत्र तुम्हारा है। हे विशालाक्षी सीते, तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, तुम्हारी सेवा में उत्तम उत्तम स्त्रियों को मैं रख देता हूँ, और तुमको जो चीज अच्छी लगे, जैसा तुमको अच्छा लगे, सब वस्तुओं पर तुम्हारा अधिकार है। और ये रावण इस लंका में बड़ा सुरक्षित है, इस लंका के अंदर देवता भी नहीं आ सकते हैं, असुर भी नहीं आ सकते हैं, यक्ष भी नहीं आ सकते हैं, गंधर्व भी नहीं आ सकते हैं, संपूर्ण लोकों में मेरे समान ताकत वाला कोई दूसरा पुरुष नहीं है। सीता, विचार करके देखो, एक राज्य से हटाया गया व्यक्ति एक तपस्वी जीवन में रो रो करके अपने दिन काटने वाले व्यक्ति को तुम किस प्रकार से क्या लाभ समझ के अपना पति मानती हो? ये जवानी सदा रहने वाली नहीं, ये दिन सदा रहने वाले नहीं है, मेरी बात को तुम मानो। देखो यहाँ वायु का भी कोई बल नहीं चलेगा, आकाश भी कुछ नहीं कर सकेगा, अग्नि की भी कोई ताकत नहीं है, त्रिलोकी के अंदर मेरे साथ युद्ध करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं आया है। ये लंका का महान राज्य सीते हमने आज आपको सौंपा है, हम सब आपके नौकर हैं, देवता वगैरह सब तुम्हारे सामने रहेंगे। अभिषेक जलक तिन्ना तुष्टाच रमस्वच, तुम यहाँ आराम से नहाओ धो रहो खाओ पियो और वनवास के सब बनों को वनवास के सब दुखों को भूल जाओ। देखो सीते मनुष्य अपने पाप का फल ही तो भोगता है, तुम्हारा जितना पाप था उसका फल तुमने वनवास में भोग लिया है, अब तुम्हारे पुण्यों का फल सामने आया है कि तुम्हारी जैसी स्त्री यहाँ मेरे यहाँ महल में आई है, इसलिए तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारे पुण्यों का उदय हो चुका है। देखो सीते ये मेरे पास पुष्पक विमान है, उस पुष्पक विमान में मेरे साथ तुम बैठ करके सब जगह सब लोकों में आराम से घूम सकती हो, कोई तुम्हें रोक टोक करने वाला नहीं है। सीते तुम्हारा ये स्वरूप और लंका में निवास इन दोनों के साथ में तुम्हारा जो शोक है इसका कोई मेल नहीं बैठ रहा है। कोई भी चीज बैठाई जाती है तो आपस की मेल के अनुसार बैठाई जाती है, तुम्हारी चीज का कोई मेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए शोक को तुम दूर करो। लेकिन सीता जो कि पहले थोड़ी रो रही थी रावण के कहने से बहुत ज्यादा रोने लगी और रावण और सीता उसी राम का चिंतन करने लगी, उसी आश्रम का चिंतन करने लगी, बहुत रोने लगी, अपना मुंह छिपा छिपा करके सिसकियां भर करके रोने लगी। रावण ने कहा सीते ये लज्जा से मुंह छिपाने से अब क्या होगा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मेरे धर्म का लोप हो जाएगा, अरे एक पति को पत्नी बनाना ये आर्ष धर्म होता है, ये आर्ष धर्म राक्षसों के यहाँ नहीं चलता है, राक्षसों के यहाँ तो किसी पति को छोड़ो किसी पत्नी को स्वीकार कर लो ये चला करता है। देखो सीते मैं तुम्हारे चरणों में अपना सिर रखता हूँ, तुम मेरे पर कृपा करो और मैं तुम्हारा दास हो जाता हूँ, तुम मेरे स्वामी स्वामिनी हो जाओ, देखो अब शोक मत करो। रावण ने आज तक किसी स्त्री के सामने अपना सिर नहीं झुकाया है, सीते एक तुम ही हो कि तुम्हारे सामने मैंने अपना सिर झुकाया है। सीता ने निर्भय होकर बड़े कष्ट के साथ रावण को तृणम अंतर तक कृत्वा एक तिनके को सहारा लेकर के वो कहने लगी, तिनका का सहारा क्यों लियो, तृणधरी ओट कहती बैदेही, तृणधर ओट ये तिनका बीच में क्यों लिया, इसलिए लिया कि भाई किसी भी पुरुष से बात करे स्त्री तो कोई साथ में होना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए, परिवार का कोई न कोई रहे। अब सीता जी के परिवार का कौन है, सीता जी जमीन से पैदा हुई और घास फूस तिनका भी जमीन से ही पैदा होता है, तो सीता जी कहते हैं मेरा भाई मेरे साथ में हो, मैं अकेली नहीं हूँ, तुम ऐसा मत समझना। दूसरा रावण अपने को बहुत बड़ा जो है बलवान मानता है, सीता कहती है कि मैं तो तुझे एक तिनके के समान समझती हूँ, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। दोनों ही अर्थ अपनी जगह बड़े लाभप्रद है। सीता ने रावण को फटकारते हुए कहा कि रावण तुझे हमारे वंश के विषय में बिल्कुल मालूम नहीं है, महाराज दशरथ धर्म की मर्यादा के एक बहुत बड़े पुल थे, उन्हीं के पुत्र हमारे पतिदेव राघव राम है, धर्मात्मा है, विशाल नेत्रों वाले हैं और वही मेरे लिए सबसे बड़े देवता है। अरे तुझे पतिव्रताओं का क्या ज्ञान है रावण, पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता स्त्री होती है उसके लिए एक ही पति हुआ करता है, और मेरे पति राम है, चाहे वो सुख पाए चाहे वो दुख पाए, चाहे वो जंगल में रहे और चाहे वो महलों में रहे, चाहे उनको माँ बाप ने निकाल दिया हो और चाहे उनको माँ बाप ने अपने रख लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पातिव्रत्य में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्ष्वाकु जैसा महान कुल हमारे पैदा हुआ है और मेरे देवर लक्ष्मण कितने बड़े त्यागी हैं, जिन्होंने उनको तो माँ बाप ने नहीं त्यागा था ना, त्याग तो हमारे यहाँ शुरू से पाठ पढ़ाया जाता है रावण। देखो पतिव्रता की महिमा त्याग के कारण से होती है। किसी पत्नी का भाग्य बड़ा अच्छा है लेकिन पति का भाग्य अच्छा नहीं है तो पत्नी पतिव्रता स्त्री पति के भाग्य को ही अपना भाग्य मानती है, अपना भाग्य है उसको अपना भाग्य मानती नहीं है। लक्ष्मण को तो वन में नहीं भेजा था, लक्ष्मण क्यों आए वन में? धर्म का पालन करने के लिए। मैं क्यों आई वन में? धर्म का पालन करने के लिए। जब तक राम और लक्ष्मण तुम्हारे सामने नहीं आ रहे तब तक तुमको जितनी बातें करनी उतनी कर लो। रावण तुम्हारे 10 खोपड़ी है, तुम्हारे पास 10 अकल है, फिर भी अकल में एक बात नहीं बैठती कि जिसने खरदूषण को और 14,000 सैनिकों को मारा वो राम अब तुमको नहीं मार सकता, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारे पास जब तक रावण राम के बाण नहीं आ रहे तभी तक रावण तुम जीवित हो, अभी तक तुमको देखा नहीं है। जिस वक्त वो तुमको देखेगा तो जैसे शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था ऐसे वो तुमको भस्म कर देगा। यश चंद्रम नवसु भूमौ पादयेत नाशयेत वा। देखो हमारे राम में कितना बल है कि वो चंद्रमा को आकाश से नीचे गिरा सकता है, उसका एक बाण समुद्र को सूख सकता है, वही राम सीता को लंका से ले जा सकता है। आप अपने ताकत की बड़ी महिमा बताते हैं, मुझे कोई ऐसी महिमा नहीं दिख रही है। मैंने जब आपके लंका के ऊपर आकाश मार्ग से दृष्टि डाली थी तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि अब ये लंका बहुत जल्दी नष्ट होने वाली है। आप मुझे जिन महलों को बता रहे हो मुझे लगता है कि महल बहुत थोड़े दिन के हैं, इन महलों में शायद आग लगने वाली है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और तुम अपने बल के अंदर अभिमान करते हो, तुमने देवताओं को जीत लिया इतना ही तुम अभिमान करते हो, परंतु राम के विषय में तुम जानते नहीं हो। तुमने मेरा अपमान करके लंका में मेरा हरण किया है, ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही निकृष्ट बात है। चांडाले ने अवमर्दित। देखो कभी कभी ऐसा होता है पवित्र यज्ञ हो रहा है जिसमें वेदों का उच्चारण हो रहा है, उसमें कोई चांडाल व्यक्ति चला जाकर उसको अपवित्र करता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म यज्ञ हो रहा था, उस धर्म यज्ञ में हमारे ससुर धर्म के लिए अपनी आहुति दिए, हमारे भरत ने भी धर्म के अंदर अपनी आहुति दी, राज्य की आहुति दी, और हमारे प्राणनाथ पतिदेव राम ने भी आहुति दी और लक्ष्मण ने भी आहुति दी, मैंने भी आहुति दी, लेकिन उसमें तुम एक चंडाल बीच में ही प्रवेश कर गए। ये हमारा बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा था लेकिन उस यज्ञ में तुम्हारे जैसे चंडाल बीच में घुस गए। क्रीडंती राजहंसेन पद्म खंडेशु नित्यशय हंसी सा तृण मध्यस्थम कथम द्रक्षेत मद्गुदम मदगुकम। यह जो राजहंसों के साथ खेलती है परंतु उसको कोई जल का किस प्रकार से देख सकता है वो देख नहीं सकता है, उसी प्रकार से इक्ष्वाकु वंश में रहने वाली मैं, मुझे तुम किसी प्रकार से लंका में नहीं रख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रावण तुम हमारे शरीर को मार दोगे तो खा जाओ मार लो, परंतु इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरी भावना तो जहाँ है वहीं रहेगी। इस प्रकार से राम जी महाराज की पत्नी सीता ने रावण को जो है फटकारा। उसके बाद रावण ने सीता को भय दिखाते हुए कहा, सीते याद रखो हमने तुम्हारी बहुत कड़वी बात सुनी है, हम वहां से तुम्हारी कड़वी बात जनस्थान से सुनते आ रहे हैं, मार्ग में सुनते आ रहे हैं, हमने सोचा कि समझ जाओगी, लेकिन तुम किसी प्रकार से हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। अभी भी मैं तुमको 12 महीने का समय देता हूँ, उस समय के अंदर तुम ठीक ढंग से या तो मेरे को स्वीकार कर लेना, और यदि मुझे स्वीकार नहीं करो तो फिर प्रातः काल के कलेवे में तुम्हारा मांस मेरे यहाँ उपस्थित हो जाएगा, मेरे रसोइये तुमको काट कीट करके मुझे दे देंगे, मैं तुम्हारे मांस को खा जाऊंगा। इस प्रकार से कहकर के रावण ने बहुत सी राक्षसियों को कहा, ये राक्षसियों आप अपना घोर रूप बना बना करके इस सीता के सामने डराओ धमकाओ प्यार से इसको समझाओ सब तरह से इसको राजी करो। किस प्रकार से ये मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा वैभव भी दिखाओ और प्यार से भी समझाओ, डराओ, सब प्रकार से इसके मन में ये बात बैठा दो कि तुम्हारे लिए रावण से बढ़कर दूसरा कोई पति नहीं है और तुम इसको यहाँ मेरे महल से ले जाओ, ये महलों में रहने लायक नहीं है। मैंने तो देखा कि महल में जाने पर ये महल में रहने की बात कहेगी, लेकिन ये तो जंगलों की रहने वाली है, ले जाओ इसको अशोक वाटिका में ले जाकर इसको रख दो और तुम सब इसके चारों तरफ सेवा में रहो। शांतिश्च मैथिलीम आनयत्वम, यदि तुम में से जो इसको भुला फुसला करके डर